सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं जय इधवलंगते नाउरियसयलभुवनभवनगणो केवलनाणशरीरो अनंजनो नामो चंदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ऊपर लिखी गई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने श्री महावीर स्वामी के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी। अब जो प्रथम अधिकार है, पेज दोष विहत्ति नाम का अधिकार, उसमें हम पृष्ठ संख्या 73 पर आ गए, 73। ये महावीर भगवान के छद्मस्थ काल का, केवली काल का आदि सब पूरा, उनकी कितनी आयु थी उस संबंधी बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं 73 पृष्ठ पर, नीचे जो 62 नंबर लिखा है जय धौलाकार ने, महावीर जिनेन्द्र के मोक्ष चले जाने पर चतुर्थ काल में 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन शेष रहे थे। 3 वर्ष और 8.5 महीने। जिस दिन महावीर जी ने निर्वाण को प्राप्त हुए, उस दिन से कार्तिक माह के 15 दिन और मार्गशीर्ष माह से लेकर 3 वर्ष 8 माह काल के व्यतीत हो जाने पर श्रावण माह की प्रतिपदा से दुष्मा काल अवतीर्ण हुआ। एक काल का प्रारंभ होता है, मैंने उसको युग कहा, इन्हें पंचम काल। इस 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन प्रमाण काल को वर्धमान जिनेन्द्र की 71 वर्ष 3 माह और 25 दिन प्रमाण आयु में मिला देने पर 75 वर्ष और 10 दिन प्रमाण काल चतुर्थ काल में से शेष रहने पर वर्धमान जिनेन्द्र स्वर्ग से अवतीर्ण हुए। दो प्रकार से यहाँ उन्होंने प्ररूपना की थी, उसका विस्तार से वर्णन भी किया है। अब शंका, इन दोनों ही उपदेशों में से कौन सा उपदेश ठीक है? उसका समाधान, एलाचार्य के शिष्य को अर्थात जय धवलाकार श्री वीरसेन स्वामी को इस विषय में, वो विपय में हुआ, विषय में दिख नहीं रहा है वहां पर, एक्चुअली इस विषय में अपनी जबान नहीं चलाना चाहिए, जवान लिखा, जबान नहीं चलाना चाहिए। वो होता है, क्योंकि इन दोनों में से कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, इस विषय का उपदेश प्राप्त नहीं है। दोनों ही उपदेश मिलते हैं, यदि अयोग्य होता तो आगे नहीं चलता ना, यानी पता नहीं है, इसलिए दोनों ही उपदेश वहाँ, हम उसमें निर्णय नहीं कर सकते। तथा दोनों में से किसी एक उपदेश की प्रधानता पाई जाती है, किंतु दोनों में से एक ही होना चाहिए, क्योंकि काल में तो कोई अंतर नहीं होगा ना, एक ही कोई तो नक्की होना चाहिए, फिर भी हम नहीं कह सकते कौन सा ठीक है, और वह एक उपदेश पाकर ही कहना चाहिए। ये चाहिए करो, चाहिए हुआ है, चाहिए अर्थात यद्यपि दोनों उपदेशों में से कोई एक उपदेश ही ठीक है, यह तभी कहा जा सकता है जब उसके संबंध में कोई उपदेश मिले। विशेषात आगम में एक उपदेश इस प्रकार पाया जाता है कि चौथे काल में 75 वर्ष 8 माह और 15 दिन शेष रहने पर भगवान महावीर स्वर्ग से अवतीर्ण हुए, और दूसरा उपदेश इस प्रकार पाया जाता है कि चौथे काल में 75 वर्ष और 10 दिन शेष रहने पर भगवान महावीर स्वर्ग से अवतीर्ण हुए। इन दोनों उपदेशों के अनुसार यह तो सुनिश्चित है कि चौथे काल में 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन शेष रहने पर भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए। निर्वाण के बारे में तो कोई दो उपदेश ने एक ही उपदेश है दोनों का मिलकर, वो स्वर्ग से कब अवतीर्ण हुए उसके बारे में संदेह है। अंतर केवल उनकी आयु के संबंध में है। पहले उपदेश के अनुसार भगवान महावीर की आयु 72 वर्ष प्रमाण बतलाई गई है और दूसरे उपदेश के अनुसार 71 वर्ष 3 माह और 25 दिन प्रमाण बतलाई गई है। दूसरे उपदेश के अनुसार वर्ष माह और दिनों की सूक्ष्मता से गणना करके आयु सुनिश्चित की गई है, पर पहले उपदेश में स्थूल मान से आयु कही गई प्रतीत होती है। यानी हम कहते हैं हम आप कितने साल के हो, तो कोई पूर्ण है उसको बता देंगे, आगे ऊपर के जो इतने महीने इतने दिन हुए वैसे कहने की पद्धति नहीं है, तो स्थूल रूप से बता दिया है। पूर्वोक्त दोनों उपदेशों के अंतर का कारण यही है। यह सुनिश्चित होते हुए भी वीरसेन स्वामी उक्त दोनों उपदेशों का संकलन मात्र कर रहे हैं, निर्णय कुछ भी नहीं दे रहे हैं। साथ ही यह भी सूचना करते हैं कि एलाचार्य के शिष्य को इन उपदेशों की प्रमाणता और अप्रमाणता के निश्चय करने में अपनी जीभ नहीं चलानी चाहिए। नहीं नहीं, कुंकुंदाचार्य के अभी इनके जो गुरु है ना, वीरसेन स्वामी के गुरु हाँ गुणधराचार्य तो पहले हो चुके थे, ये निकालना प्रस्तावना। वीरसेन स्वामी की बात ग्रंथकार परिचय है ना, उसमें 41 के आगे देखें। वीरसेन स्वामी के संबंध में जहाँ विस्तार लिखा है, जयधवला के रचित 67 पेज के हाँ हाँ, मगर उनकी पहले उनके गुरु का भी बात होगी उसमें। क्योंकि उनके गुरु का नाम यहाँ एलाचार्य लिखा है। अब एलाचार्य तो पदवी भी है ना, वो किसी को भी हो सकती है। उसमें से पढ़ेंगे हम बाद में। यही आस इसी में कहीं होना चाहिए, 71 पेज के आजू बाजू में। आगे पढ़ेंगे अपनी बात। एक्चुअली पूरा जो पढ़ेंगे ना उसमें 66 और 67 पर जो लिखा है वो श्लोकों में उनके संबंध में उनके गुरु का नाम होना चाहिए। अभी हम आते हैं अपने विषय पर। हमने ये पढ़ा था इलाचार्य के शिष्य को, इन्हें वीरसेन स्वामी को, इन उपदेशों की प्रमाणता और अप्रमाणता के निश्चय करने में अपनी जीभ नहीं चलानी चाहिए, ऐसा वे स्वयं लिखते हैं, कोई अन्य उनके लिए नहीं कह रहा है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मुझे मेरी जीभ इस प्रकार से नहीं चलाना चाहिए। यह मुख्य विवाद का कारण दोनों उपदेशों के अनुसार सुनिश्चित की गई आयु है। आयु कितनी लंबी है उसके बारे में यह विवाद है। यह तो निश्चित प्राय है, यानी निश्चित जैसा ही है, जब दोनों उपदेशों में गर्भ और निर्वाण की तिथि एक ही है तो पूरे 72 वर्ष प्रमाण आयु नहीं हो सकती। आयु या तो 72 वर्ष से कम होगी या अधिक, पर पूरे 72 वर्ष प्रमाण आयु के कहने में जो भी कारण हो, यह वर्तमान काल में अज्ञात है। गर्भ की तिथि निश्चित है और निर्वाण की निश्चित है। उसके जानने का वर्तमान में कोई साधन नहीं है, इसलिए इनमें से किसी उपदेश को अप्रमाण तो कहा नहीं जा सकता। और यही कारण है कि वीरसेन स्वामी ने दोनों उपदेशों का संकलन मात्र कर दिया पर अपना कुछ भी निर्णय नहीं लिया। अब 64 नंबर का, यदि कोई ऐसा माने कि जिनेंद्र देव के द्वारा उपदिष्ट होने से, उपदिष्ट ने उपदेशित, जिनेंद्र भगवान ने जिसका उपदेश किया है, ऐसा होने से द्रव्यागम प्रमाण हो, किंतु वह अप्रमाणीभूत पुरुष परंपरा से परंपरा हुआ, परंपरा करो परंपरा से आया हुआ है, क्या कहना चाहता है? शिष्य क्या पूछता है कि जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया है, इसलिए ये जो द्रव्य आगम है उसको तो हम प्रमाण मानेंगे, उसको तो सही मानेंगे, परंतु परंपरा से ये उपदेश जो चला आया है तो अप्रमाणीभूत पुरुष भगवान तीर्थंकर को तो प्रमाण कहा, और अन्य जो है उनको कहते हैं वो अप्रमाणीभूत पुरुषों के द्वारा जो आगम हमें अभी प्राप्त है तो उसमें वो उस आगम को हम प्रमाण कैसे मानेंगे? अर्थात भगवान के द्वारा उपदिष्ट आगम जिन आचार्यों के द्वारा हम तक लाया गया है वे प्रमाण नहीं थे, यानी शिष्य आचार्यों को प्रमाण नहीं मान रहा है। अतएव वर्तमान कालीन द्रव्यागम अप्रमाण है, ऐसा जो शिष्य का कहना है सो उसका ऐसा मानना भी ठीक नहीं है। यह अभी वीरसेन स्वामी कह रहे, यदि शिष्य ऐसा मानता है कि जिन आचार्यों के द्वारा वह आगम हमारे तक, ऐसे उनके काल में बता रहे, अभी आज के काल की बात छोड़ो, तो ऐसा कहना भी उचित नहीं है। ये बात वीरसेन स्वामी समझा रहे हैं, क्योंकि द्रव्यागम राग द्वेष और भय से रहित आचार्य परंपरा से आया हुआ है। वीतरागी आचार्य ने, आचार्यों की जो भूमिका है, भावलिंगी जो संत है, राग द्वेष और भय से रहित होते हैं। भय के कारण कुछ खोटा लिख देवे, उसमें बीच में घुसेर देवे, ऐसी बात नहीं हो सकती, इसलिए उसे अप्रमाण मानने में विरोध आता है। आगे इसी विषय का स्पष्टीकरण करते हैं। जो आर्य क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं, मतिश्रुत अवधि और मनपर्याय, इन 4 निर्मल ज्ञानों से संपन्न है। अब ये सब किसका वर्णन चल रहा है? गणधरों का चलेगा। ऐसे आर्य इंद्रभूति के लिए, ये बहुत बड़ा वाक्य है, 10-15 लाइन तो इसमें आएगी। तो ये इंद्रभूति की बात यहाँ बता रहे हैं, कैसे वे आर्य क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं, मतिशुता उदय और मनपर्य इन चार निर्मल ज्ञानों से संपन्न है, जिन्होंने दीप्त उग्र और तप्त तप को तपा है। ये तप के जो अलग अलग भेद है, उस तप को उन्होंने अंगीकार किया है, उस तप को किया है, जो अणिमा आदि 8 प्रकार की वैक्रियक लब्धियों से संपन्न है। हमने देखा ना, उनके सभी रिद्धियां प्राप्त है, एक केवल ज्ञान रिद्धि बुद्धि रिद्धि छोड़कर बाकी सभी उनके प्राप्त है। तो अणिमा आदि 8 प्रकार की वैक्रियक रिद्धियां हैं उनके, जिनका सर्वार्थ सिद्धि में निवास करने वाले देवों से अनंत गुणा बल है। हाँ, अब क्योंकि वो कैसे है, चरम शरीरी है, तो वज्र ऋषभ नारा सहनन वाले वे भी है ना, मोक्ष जाने वाले हैं। पलटा नहीं का इंद्र का, वो तो सौधर्म इंद्र का भी, इनका तो और ज्यादा होगा। अनंत गुणा कहा, जो एक मुहूर्त में बाहर अंग 12 अंगों के अर्थ और द्वादशांग ग्रंथों के स्मरण और पाठ करने में समर्थ है। ओ, खाली जानने की बात भी नहीं है, ग्रंथों के बराबर करना। क्या कहते हैं, एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त कितना बड़ा होता है मालूम है, वो तो अंतर मुहूर्त हुआ, एक मुहूर्त बात बताए ना, ये कहां बता रहे, एक मुहूर्त की बात में पूछ रहे। मुहूर्त 48 मिनट को कहते, 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, यानी 48 मिनट। तो क्या कहते, जो एक मुहूर्त में 12 अंगों के अर्थ और द्वादशांग रूप ग्रंथों के स्मरण और पाठ करने में समर्थ है, जो अपने पानी पात्र में दी गई, ये पानी पात्र क्या होता है, पानी ग्रहण सुना है कि नहीं, हस्तमेला, पानी यानी हाथ, वो पानी में नी जो ई है ना, वो पहली ई है, ह्रस्व ई है, पानी में दीर्घ पानी करेंगे तो पानी का अर्थ वो पीने का जल होता है, और पानी का नी ह्रस्व करते हैं तो उसका अर्थ होता है हाथ। ये चक्र पाणी नाम सुना होगा आपने, ये बुद्ध होता है ना, गौतम बुद्ध के दोनों बाजू उसके वो चक्रधर होते हैं, उसको चक्र पाणी कहते हैं, चक्र है हाथ में जिसके, उसको चक्र पाणी कहते हैं। और ये पानी पात्र वाले अपने मुनिराज कैसे, पानी पात्र यानी हाथ में आहार लेते हैं ना, करपात्र भी कहने में आता है कहीं, जो अपनी प्राणी पात्र में दी गई खीर को अमृत रूप से परिवर्तित करने में, वो अमृत रसा श्रावी ऐसा कुछ उनका है, उस तप का वृद्धि का कुछ नाम है ऐसा, या उसे अक्षय बनाने में समर्थ है। अक्षय ने वो तो कभी खत्म ही नहीं हुए, हाँ पूरी वो आहार ले जाए और वहां जो बची है खीर उसमें से पूरी चक्रवर्ती की सेना भी हाँ पेट भर के खा जाए तो भी वो समाप्त नहीं होगी, ये अक्षय बनाने में समर्थ है लिखा ना यहाँ पर। ऐसी खास रिद्धियां होती है उनकी, जिन्हें आहार और स्थान के विषय में अक्षीण रिद्धि प्राप्त की है, यानी उनका उपदेश हो रहा हो और वहां अभी इतनी जगह है तो वहां कितने ही लाखों लोग आके भी उसी जगह में बैठ सकते हैं, तो भी वो स्थान अधूरा अपूरा नहीं होगा, उसमें सभी ऐसे ही सहज रिद्धि प्राप्त होती है उनके, यानी आहार के बारे में भी और स्थान के बारे में भी, इसको अक्षीण रिद्धि कहते हैं। ये कितनी कितनी रिद्धियां है ना, उसमें से थोड़ी कुछ यहाँ वर्णन करेंगे। ये अक्षीण रिद्धि हुई, जिन्होंने सर्वावधि ज्ञान से, ये केवल अवधि ज्ञान है ऐसा नहीं, सर्वावधि ज्ञान है, अशेष पुद्गल द्रव्य का साक्षात्कार कर लिया है, अशेष का अर्थ है अभी उनके ज्ञान में से कोई एक परमाणु भी बाकी नहीं रहा है। विश्व में जितने अनंतानंत पुद्गल परमाणु है उनकी जो कोई अवस्था है, कोई परमाणु रूप से, कोई दो अणुओं का स्कंद रूप से, कोई त्रिनयुग स्कंद है, कोई असंख्यात अणुओं का स्कंद है, कोई अनंतानंत अणुओं का स्कंद है और महास्कंद तक, यानी ऐसे कोई पुद्गल नहीं है कि जो उनके ज्ञान से परे हो। और उनकी कितनी ही भूत और भविष्य की पर्याय भी ले जानेंगे ना, वो असंख्यात लोक प्रमाण हमने देखा था। तो सर्वावधि ज्ञान से अशेष पुद्गल द्रव्य का साक्षात्कार कर लिया है। अक्षीण यानी वो समाप्त नहीं होता है, अक्षीण यानी स्थान भी अधूरा पूरा नहीं होता है, कितने भी वहां चक्रवर्ती की सेना भी आ जाए वहां पर फिर भी उसमें समा जाती। तप के बल से जिन्होंने उत्कृष्ट विपुलमति मनपरे ज्ञान उत्पन्न कर लिया है, यानी उनको मनपरे तो है, कौन सा है? उत्कृष्ट विपुलमति मनपरे ज्ञान, क्योंकि विपुलमति मनपरे में भी जघन्य और उत्कृष्ट भेद होते हैं, उसमें से उत्कृष्ट वाला है जो सात प्रकार के भय से रहित है, जिन्होंने चार कषायों का क्षय कर दिया है, जिन्होंने पांच इंद्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने चार, ये दो बार आया, ऊपर क्या है, पीछे प्राकृत में देखते दिसारे पोगल दवस तप बले न उपाय दुखस विवल मधि मन पज्जव नानस सत्त भयादिदस खविद चदु कषायस। ये खविद चदु कषायस ने चार कषायों का क्षय किया है। जिय पंचिंद्रियस भग भग गति दंडस, ये भूल से दो बार है। छत जीव दयावरस जीव पंचिंद्रियस, यानी पहले बार जो लिखा है वो रखना है, सेकंड लाइन में जो लिखा है जिन्होंने चार कषायों का क्षय कर दिया है, जिन्होंने पांच इंद्रियों को जीत लिया है, उसके बाद तथा मन वचन और काय रूप तीन दंडों को भग्न कर दिया है, जो छह कायिक जीवों की दया पालने में तत्पर है। यहाँ लिखा ना भग ती दंडस, तीन दंड को भग्न किया है, और छज्जीव दयावरस षट कायिक जीवों की दया पालने में तत्पर है। अब आगे जिन्होंने कुलमद आदि आठ मदों को नष्ट कर दिया है, नठव्य अठ मयस मयने मद, आठ प्रकार के मद का नाश कर दिया है, जो क्षमादि दस धर्मों में निरंतर उद्यत है, जो आठ प्रवचन मातृक, ये आठ प्रवचन मातृक क्या होते हैं? हाँ, पांच समिति और तीन गुप्त, इसको आठ प्रवचन मातृक या आठ प्रवचन माता भी कहते हैं। हाँ लिखा है इसमें, हाँ, जो आठ प्रवचन मातृक गणों का अर्थात पांच समिति और तीन गुप्तियों का परिपालन करते हैं, जिन्होंने क्षुधा आदि 22 परिषहों के प्रसार को जीत लिया है, यानी उसके होने पर उन्हें कोई रंच मात्र भी आकुलता नहीं है, अपने स्वरूप में ही स्थिर होते हैं वे, और जिनका सत्य ही अलंकार है, ये इतने सारे विशेषण बताए। ऐसे कौन है अभी बताएंगे? ऐसे आर्य इंद्रभूति के लिए उन महावीर भट्टारक ने अर्थ का उपदेश दिया। सामने इतना पात्र और उनकी वाणी पूरे पुर झेल सके ऐसा पात्र जीव है निमित्त रूप से, तो यहाँ वाणी का खिरना भी होता है। वाणी क्यों नहीं खिरी? तो निमित्त से कह दिया ना, गणधर की उपस्थिति नहीं थी इसलिए।
ये सहज ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। उसके अनंतर उन गौतम गोत्र में उत्पन्न हुए इंद्रभूति ने एक अंतर्मूर्त में द्वादशांग के अर्थ का अवधारण करके, यानी पहले में पहले इंद्रभूति ने अवधारण किया, फिर उसी गोत्र में उत्पन्न हुए इंद्रभूति ने भी उसका अवधारण करके ने जान लिया, उसको धारण कर लिया, उसी समय 12 अंगरूप ग्रंथों की रचना की और गुणों से अपने समान श्री सुधर्माचार्य को उसका व्याख्यान किया। तदनंतर कुछ काल के पश्चात, देखो पहला नाम किसका आया है, अरे इंद्रभूति का ही आया, सॉरी उन्हीं की बात, उन्होंने उपदेश किया और अनंतर इन्होंने रचना की, मैंने कुछ गलत उसमें आपको बताया, इंद्रभूति की ही बात पहले बताई, यानी उपदेश दिया वहां तक तो पहले सारा वर्णन हो गया, उपदेश सुनने के बाद उन्होंने रचना की तो पहले में पहले इंद्रभूति, फिर उन्होंने उपदेश दिया सुधर्माचार्य। तदनंतर कुछ काल के पश्चात इंद्रभूति भट्टारक केवल ज्ञान को उत्पन्न करके और 12 वर्ष तक केवली विहार रूप से विहार करके मोक्ष को प्राप्त हुए। उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति उसी दिन हुई जिस दिन इनका मोक्ष कल्याणक हुआ था, उसी दिन शाम को। और 12 वर्ष उनका केवली काल रहा और उसके बाद मोक्ष को प्राप्त हुए। उसी दिन सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी आदि अनेक आचार्यों को द्वादशांग का व्याख्यान करके 4 घातिया कर्मों का क्षय करके केवली हुए। जिस दिन ये मोक्ष को प्राप्त हुए उस दिन सुधर्माचार्य केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। नहीं नहीं, महावीर स्वामी के तो 3 वर्ष बाद तो 5वां काल शुरू हुआ, परंतु ये थे तो 4थे काल के सभी जीव। हाँ, वो 4थे काल में जन्मे हुए हैं ना ये सब। बाद में 5वें काल में मोक्ष उनका 5वें काल में हुआ। उपदेश तो हुआ कभी केवल ज्ञान होने के 66 दिन के बाद उपदेश हुआ, तभी से उन्होंने उपदेश तो ग्रहण किया था। इनको केवल ज्ञान कब हुआ, जब महावीर स्वामी मोक्ष गए तब इंद्रभूति को केवल ज्ञान हुआ, उसके पश्चात 12 वर्ष के बाद वे मोक्ष गए तब सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ। हाँ, तो केवल ज्ञान होने के बाद उन्होंने जो उपदेश दिया उसमें जम्बू स्वामी को लिया यहाँ नहीं, 4थे में 3 साल बाकी रहे, अभी हमने पढ़ा ना पूरा। हाँ हाँ, 3 साल और 8.5 में। हाँ केवली, तदनंतर सुधर्म भट्टारक भी 12 वर्ष तक केवली विहार रूप से विहार करके, केवली विहार ने उनका भी उपदेश हुआ, मोक्ष को प्राप्त हुए। देखो महावीर के बाद 12 साल के बाद इंद्रभूति गौतम, उसके 12 साल बाद सुधर्माचार्य, उसके 12 साल बाद उसी दिन जम्बू स्वामी भट्टारक, विष्णु आचार्य आदि अनेक ऋषियों को द्वादशांग का व्याख्यान करके केवली हुए। वे जम्बू स्वामी भी 38 वर्ष तक केवली विहार रूप से विहार करके मोक्ष को प्राप्त हुए। ये जम्बू स्वामी इस भरत क्षेत्र संबंधी अवसर्पणी काल में पुरुष परंपरा की अपेक्षा अंतिम केवली हुए, यानी हमारे आदि तीर्थंकर तो आदिनाथ हुए। सबसे पहले मोक्ष जाने वाले कौन थे, अनंत वीर। आदिनाथ के पहले मोक्ष गए थे और ये अंतिम वाले जम्बू स्वामी। इन जम्बू स्वामी के मोक्ष चले जाने पर सकल सिद्धांत के ज्ञाता यानी द्वादशांग के ज्ञाता और जिन्होंने चार कषायों को उपशमित कर दिया था, ये उपशम वाले थे। ऐसे विष्णु आचार्य नंदीमित्र आचार्य को द्वादशांग समर्पित करके अर्थात उनके लिए द्वादशांग का व्याख्यान करके देवलोक को प्राप्त हुए। पुनः इसी क्रम से पूर्वोक्त दो और अपराजित गोवर्धन तथा भद्रबाहु यानी ये नंदीमित्र विष्णु और नंदीमित्र जम्बू स्वामी के बाद विष्णु आचार्य नंदीमित्र आचार्य फिर अपराजित गोवर्धन और भद्रबाहु ये पांच आचार्य पुरुष परंपरा क्रम से सकल सिद्धांत के ज्ञाता हुए जिनको हम बारह अंग के द्वादशांग के धारी श्रुत केवली कहते हैं। पुरुष परंपरा ने भगवान की वो जो पुरुष परंपरा ऐसे इन पांचों ही श्रुति केवलियों का काल 100 वर्ष होता है। तदनंतर भद्रबाहु भगवान के स्वर्ग चले जाने पर सकल श्रुत ज्ञान का विच्छेद हो गया। श्रुत ज्ञान का संपूर्ण विच्छेद नहीं हुआ, संपूर्ण श्रुत ज्ञान का विच्छेद हुआ। नहीं समझे? श्रुत ज्ञान का पूरा विनाश नहीं होता, नहीं हुआ, वो तो अभी भी चल रहा है, परंतु संपूर्ण श्रुत ज्ञान जानने वाला कोई जीव नहीं रहा, इसलिए कहा संपूर्ण श्रुत ज्ञान का विच्छेद हुआ। किंतु इतना विशेष है कि उस समय विशाखाचार्य आचार आदि 11 अंगों के और उत्पाद पूर्व आदि 10 पूर्वों के तथा प्रत्याख्यान प्राणावाय क्रिया विशाल और लोक बिंदुसार इन 4 पूर्वों के एक देश के धारक हुए। क्या कहना, ये विशाखाचार्य आदि जो है आचार आदि जो है विशाखाचार्य जो हुए आचारांग आदि 11 अंग और 14 पूर्व में से 10 पूर्व का तो पूरा ज्ञान और जो उर्वरित 4 पूर्व है उसका एक देश ज्ञान लिखा ना। देखो फिर पढ़ते हूँ, आचार आदि 11 अंगों के उत्पाद पूर्व आदि 10 पूर्वों के और प्रत्याख्यान प्राणावाय क्रिया विशाल और लोक बिंदुसार इन 4 पूर्वों के एक देश के धारक हुए। पुनः अविच्छिन्न संतान रूप से यानी बीच में कोई भंग पड़े बिना प्रवाह रूप से प्रोष्ठिल्ल क्षत्रिय जयसेन नागसेन सिद्धार्थ धृतिसेन विजय बुद्धिल्ल गंगदेव और धर्मसेन ये 11 मुनिजन 10 पूर्वों के धारी हुए। उनको 10 पूर्वधारी कहते हैं। पहले चतुर्दश पूर्वधारी थे, तब तो पूरे ही शुद्ध केवली कहलाते थे, अब ये 10 पूर्व के धारी हुए। 11 अंग और 10 पूर्व, अकेला पूर्व का नहीं है। जब हम 10 पूर्वी कहते हैं तो 11 अंग और 10 पूर्व। उनका काल 183 वर्ष होता है। नहीं नहीं नहीं, 12वें अंग की बात है। हाँ, मुख्यतः ये पूर्वों की है ना, पूर्व सबसे बड़े हैं, बाकी का ज्ञान होगा उनके। नहीं नहीं, 14 पूर्व अलग है, प्रथमान योग सूत्र चूलिका है। नहीं नहीं नहीं, वो तो दृष्टिवाद के 5 भेद है, दृष्टिवाद के 5 भेद है। एक सूत्र है, परिकर्म है, सूत्र है, प्रथमान योग है, पूर्व है और चूलिका है। उसमें से पूर्व में 14 भेद है, पूर्व के 14 भेद है, 14 पूर्व होते हैं, अन्य तो हो गए ही। नहीं, चौथा ये पूर्व का भेद है और उस पूर्व में 14 पूर्व होते हैं, उसमें उत्पाद पूर्व वगैरह उसमें आ जाएंगे सब। अब उनका काल 183 वर्ष होता है। ये सारी बातें हमने इसमें भी पढ़ी थी, देखो 40 पृष्ठ निकालना प्रस्तावना का। दवला में क्या, ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रस्तावना में भी कहीं हमने पढ़ी है, नहीं इसको कहाँ पढ़ा है। ये हमारे नेमीचंद रखियाल वाले थे ना, फटाफट फटाफट पूरे की पूरी जैसे वंशावली होती है ना, फटपट 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 बोलते थे कि पहले महावीर हुए, फिर ये इतने गणधर हुए, फिर ये हुए, फिर ये हुए, फिर ये हुए, ऐसे धड़ाधड़ बोल देते थे। देखो पहले 62 वर्ष में 3 केवल ज्ञानी हुए, प्रस्तावना का 46 पृष्ठ, यहाँ भी 47 पृष्ठ पर देखो, गौतम, सुधर्म और जम्बू, ये 3 केवली हुए, और फिर 100 वर्ष में 5 श्रुत केवली हुए, विष्णु, नंदी, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, मिला ना। 47 पृष्ठ पर तो नाम सहित लिखा है। आगे 183 वर्ष में 11 जो मुनिराज है वो 10 पूर्व के धारी हुए, 11 10 पूर्वी लिखा है ना, ये विशाख दत्त, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजयसेन, बुद्धिमान, गंग, धर्म, 11 अंग तो होते ही है। जब 10 पूर्वी कहते हैं तो 11 अंगों का ज्ञान उनके है, और 12वें अंग में से 10 पूर्व तक का ज्ञान है, 183 वर्ष तक। अब 5-2 एकादशांग धारी, यानी 11 अंग के धारी 220 साल में वो 5 हुए, नक्षत्र, जयपाल, पांडु, द्रुमसेन और कंस, और फिर 4 हुए आचार अंग के धारी, और फिर अन्य अन्य अंगों का पूर्वों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे गया। अभी हम ओरिजिनल पृष्ठ पर आते हैं, देखो 78 पृष्ठ पर फिर वापस आते हैं। उनका काल 183 वर्ष होता है। यहाँ हमने सेकंड लाइन पढ़ी थी, धर्मसेन भगवान के स्वर्ग चले जाने पर भारतवर्ष में 10 पूर्वों का विच्छेद हो गया, यानी 10 पूर्वधारी कोई नहीं रहे, इतनी विशेषता है कि नक्षत्राचार्य, जशपाल, पांडु, ध्रुवसेन, कंसाचार्य, ये 5 मुनिजन क्रम से 11 अंगों के धारी और 14 पूर्वों के एक देश के धारी हुए। ये बात आई ना आपको, 11 अंगों के बारे में प्रश्न था ना, 14 पूर्वों के कैसे एक देश, थोड़ा थोड़ा उसमें से रह गया था। इनका काल 220 वर्ष होता है। पुनः 11 अंगों के धारी कंसाचार्य के स्वर्ग की चले जाने पर यहाँ भरत क्षेत्र में कोई भी आचार्य 11 अंगों का धारी नहीं रहा। वो ध बराबर कर, भरत क्षेत्र में कोई भी नहीं रहा, और बाकी कहने वाले कहते हमारे पास मूल ओरिजिनल अंग है सभी। हाँ आगो में इतनी विशेषता है कि उसी काल में पुरुष परंपरा क्रम से सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहार्य, ये 4 आचार्य आचारांग के धारी और शेष अंग और पूर्वों के एक देश के धारी हुए। आचारांग तो पूरा रह गया, एक अंगधारी रह गया ना, और अन्य अंग और पूर्वों का थोड़ा थोड़ा भाग रह गया। आचार अंग के धारण करने वाले इन आचार्यों का काल 118 वर्ष होता है। पुनः लोहाचार्य के स्वर्ग चले जाने पर आचार अंग का विच्छेद हो गया। इन समस्त कालों का जोड़ 62, ये केवल ज्ञानी हुए थे, फिर 100, ये पूर्व द्वादशांग के ज्ञानी थे, 183 ये 10 पूर्व के धारी थे, 220 11 अंगों के और 14 पूर्वों के एक देश के धारक थे, और 118 वो आचार अंग के धारक थे, और अंग बाह्य अंग अन्य जो अंग और पूर्व है उसके एक देश के धारक थे। इस तरह से 683 83 अधिक 600 वर्ष होता है विशेषार्थ। इसी को फिर दोबारा दोहराते हैं। तीन केवलियों के नामों में धवला में सुधर्माचार्य के स्थान में लोहार्य नाम आया है। लोहार्य सुधर्माचार्य का ही दूसरा नाम है। जैसा कि जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति की तेनवी लोहज्जस्य लोहज्जेनय सुधम्माणामेण इस गाथांश से प्रकट होता है, तथा 10 पूर्वधारियों के नामों में जयसेन के स्थान में जयाचार्य, नागसेन के स्थान में नागाचार्य, सिद्धार्थ के स्थान में सिद्धार्थ देव नाम धवला में आया है। इन नामों में विशेष अंतर नहीं है। मालूम होता है कि प्रारंभ के दो नाम जय धवला में पूरे लिखे गए हैं और अंतिम नाम धवला में पूरा लिखा गया है, तथा 11 अंग के नामधारियों में जसपाल के स्थान में धवला में जयपाल नाम आया है। बहुत संभव है कि लिपि दोष से ऐसा हो गया हो या ये दोनों ही नाम एक आचार्य के रहे हो। इसी प्रकार आचारंगधारी आचार्यों के नामों में जह बाहु के स्थान में धवला में जस बाहु नाम आता है। इंद्रनंदीकृत श्रुतावतार में, ये श्रुतावतार नाम के ग्रंथ जो है उसमें इसी स्थान में जयबाहु यह नाम पाया जाता है। इसलिए यह कहना बहुत कठिन है कि ठीक नाम कौन सा है। लिपि दोष से भी इस प्रकार की गड़बड़ी हो जाना बहुत कुछ संभव है। जो भी हो, यहाँ एक ही आचार्य की दोनों कृति होने से पाठ भेद का दिखाना मुख्य प्रयोजन है। वर्धमान जिनेन्द्र के निर्वाण चले जाने के पश्चात इतने अर्थात 683 वर्षों के व्यतीत हो जाने पर इस भरत क्षेत्र में सब आचार्य सभी अंगों और पूर्वों के एक देश के धारी हुए हैं। यानी सभी अंगों और पूर्वों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान बाकी रहा, उसके पश्चात अंग और हुआ है, और पूर्वों का एक देश ही आचार्य परंपरा से आकर गुणधर आचार्य को प्राप्त हुआ है। गुणधर आचार्य के पास भी अंगों और पूर्वों का एक देश ही आया था। पुनः ज्ञान प्रवाद नामक पांचवे पूर्व की 10वीं वस्तु संबंधी तीसरे कषाय प्रावृत रूपी महासमुद्र के पार को प्राप्त, उसको भी महासमुद्र कहा और उसमें से उन्होंने 233 गाथाएं बनाई। महासमुद्र के पार को प्राप्त ने उसको उतना जो अवेलेबल था उसको सब पूरा जान लिया था। गुणधर भट्टारक ने, जिनका हृदय प्रवचन के वात्सल से भरा हुआ था, 16,000 पद प्रमाण इस पेज्य दोष पाउड का ग्रंथ विच्छेद के भय से केवल 180 गाथाओं के द्वारा उपसंहार किया। विशेषार्थ, पहले जो पेज्य पाहुड़ 16,000 पद प्रमाण बतलाया है वह ज्ञान प्रवाद नामक पांचवे पूर्व की 10वीं वस्तु के मूल पेज्य पाहुड़ का प्रमाण समझना चाहिए। ये जो ओरिजिनल पेज्य पाहुड़ वो 16,000 पद प्रमाण है और उसमें से इन्होंने 180 उपसंहार किया था। यहाँ पद से मध्यम पद लेना चाहिए। मध्यम पद में कितने अक्षर होते मालूम है? सोलह सौ 34,83,07,888। उस दिन हमने उसकी विस्तार से चर्चा की थी ना। तो ये मध्यम पद लेना चाहिए और ऐसे मध्यम पद से 16,000 पद प्रमाण उसकी रचना थी मूल में, क्योंकि द्वादशांग की गणना मध्यम पदों के द्वारा ही की गई है। पुनः वे ही सूत्र गाथाएं, ये सूत्र गाथाओं में रचना की ना उन्होंने कषाय प्रावृत की, आचार्य परंपरा से आती हुई आर्यमंक्षु और नागहस्ती आचार्य को प्राप्त हुई। पुनः उन दोनों ही आचार्यों के पादमूल में गुणधर आचार्य के मुख कमल से निकली हुई उन 180 गाथाओं के अर्थ को भली प्रकार श्रवण करके प्रवचन वत्सल यति वृषभ भट्टारक ने उन पर चूर्णी सूत्रों की रचना की। ये तो हमने विस्तार से पहले प्रस्तावना में पढ़ा था। इस प्रकार जिसलिए ये सर्व ही आचार्य चारों कषायों को जीत चुके हैं, पांचों इंद्रियों के प्रसार को नष्ट कर चुके हैं। इसका अर्थ क्या है? इंद्रिय विजय है ना, उनके इंद्रिय विजय प्राप्त है। चारों संज्ञा रूपी सेना को चूरित कर चुके हैं। ये चार संज्ञा कौन सी पता है आपको? हाँ, आहार भय मैथुन और परिग्रह, रिद्धि गारव, रस गारव और सात गारव से रहित है। गारव यानी मद, ना उनके रिद्धि का मद है और ना ही रस संबंधी और ना ही साता संबंधी। शरीर से अतिरिक्त बाकी के समस्त परिग्रह रूपी कलंक से मुक्त है। ये इसमें आता है ना, पद्म प्रभ मलधारी देव नियमसार की टीका में बार बार कहते हैं शरीर मात्र जिनके परिग्रह, ऐसे ऐसे ऐसा वर्णन आता है उसमें। एक आसन से ही सकल ग्रंथों के अर्थ को अवधारण करने में समर्थ है। संपूर्ण ग्रंथ का अवधारण कुछ समयों में कुछ ऐसे एक आसन से ही करने में समर्थ है। और असत्य के कारणों के नहीं रहने से मोह रहित वचन बोलते हैं। इस कारण ये सब आचार्य प्रमाण है। आचार्यों की प्रमाणता को यहाँ सिद्ध किया है। वो क्यों प्रमाण है, इसलिए ये सारी बातें बताई। अब कहते वक्ता की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है, ऐसा न्याय होने से ये चार नंबर लिखा है ना, न्याय सूत्र है उसको, या मूला राधना में बताया है, वक्तृ प्रामाण्यात बिना न वचन प्रामाण्य सिद्धि। वक्ता के प्रमाणता के बिना उनके वचन का प्रमाणता नहीं होती। नीचे फुट नोट में लिखा है। ऐसा न्याय होने से इन आचार्यों का व्याख्यान और उनके द्वारा उपसंहार किया गया ग्रंथ, उपसंहार उसके शॉर्ट किया ना उन्होंने, इतना बड़ा विस्तार था तो विस्तार के भय से उसका विनाश हो जाएगा ऐसी आशंका हुई, इसलिए उन्होंने बिल्कुल सूत्रात्मक छोटी रचना की। कि जो क्योंकि उस समय तो सारा ये मौखिक ही था ना, वो तो एक दूसरे को उपदेश देते थे, बाद में वो लिखित रूप से रह गया। उनके द्वारा उपसंहार किया गया ग्रंथ प्रमाण है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रामाणिक पुरुष परंपरा क्रम से आया हुआ वचन समुदाय अप्रमाण नहीं हो सकता। ये मूल कर्ता हम देखते हैं, सर्वज्ञ भगवान है। ये शास्त्र के प्रारंभ में ऐसे कहने की भी पद्धति अभी भी चलती है बहुत जगह। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रह श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा, और उनके उपदेश के अनुसार और आचार्य उनकी परंपरा, ऐसे पूरा ये संस्कृत वाक्य है। अब तक ये ग्रंथ इस रूप से इस नाम से आया हुआ है, ऐसी बात आती है। पूरी आगम परंपरा बताई जाती है और अंत में बताते हैं श्रोता रहा श्रावधानतया शृण्वन्तु, सावधान होकर सुनिए, ऐसा लिख, और फिर ग्रंथ यानी मंगलाचरण आदि गाने की पद्धति है। शंका, श्रुत में संख्या प्रमाण कैसे संभव है? उसका समाधान नहीं, क्योंकि द्रव्य श्रुत संबंधी वर्ण पद और वर्ण तथा पद, वर्ण यानी उसके अक्षर, पद यानी उसके शब्द तैयार होते हैं ना, और वर्ण तथा पदों के द्वारा कहे गए पदार्थों का आश्रय करके श्रुत में संख्या प्रमाण संभव है। आगे उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। ऊपर की गाथा हम पढ़ेंगे, उसी का नहीं, वो तो बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। श्रुतक ज्ञान में असंयोगी समस्त वर्णों का समुदाय 64 है। वर्णेने अक्षर, वर्णेने यहाँ रंगों की कोई बात नहीं है। इनके निमित्त से जितने संयोगी अक्षर उत्पन्न होते हैं, असंयोगी वर्ण सहित उतने समस्त श्रुतक ज्ञान के अक्षर है। क्या कहना चाहते हैं? श्रुतक ज्ञान के अक्षर कितने हैं? तो अक्षर कितने हैं अलग अलग लिखेंगे तो 64 है। जैसे स्वर व्यंजन और वो सब कुछ मिलकर 64 अक्षर होते हैं, तो 64 को एक एक बार लेंगे तो 64 हो गए। अब दो के दो के संयोग करो तो दो दो के संयोग फिर हम वहां रखेंगे। दो के संयोग कितने ज्यादा हो जाएंगे ना, जैसे हम तीन लेते हैं तो दो के संयोग भी तीन होते हैं, इसका 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 और फिर इसका इसका। ऐसे तीन के संयोग कितने हो गए, चार के संयोग कितने हो गए, उसके लिए जो कोई सूत्र है उसके द्वारा वो पूरा निकाले जाते हैं, कितने उसमें से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। उस दिन हमने निकाला था, याद है ना, इकट्ठी माइनस वन, इतने सभी संयोगी भंग हो गए उनमें। 64 मूल अक्षरों का भी प्रत्येक संयोग उसको कहेंगे, या प्रत्येक एक अक्षर उसको मिलाते हुए सभी का जोड़ इतना हो जाता है। उन अक्षरों का प्रमाण कितना है ये पूछा आगे, देखो
अक्षर का
है। 16 34, तो वो तो पदों में अक्षरों की संख्या बताई, यहाँ पूरे श्रुतक ज्ञान में अक्षर कितने उसके बाद अब पूछ रहे हैं। ये इकट्ठी जिसको कहना है ना वो अभी बता रहे हैं। उन अक्षरों का प्रमाण कितना है तो यहाँ लिखा है, देखो 184,1844 है ना, 184,467 कोड़ा कोड़ी, यानी यहाँ तक रुक के तो फिर कोड़ा कोड़ी हो जाएगी। कोड़ा कोड़ी यानी इसके आगे कितनी संख्या होनी, कितने डिजिट्स होने चाहिए, 14 डिजिट्स इसके आगे हो गए। फिर 44,07,370 करोड़, यानी इसके आगे भी अभी 7 डिजिट्स और रहेंगे। 95,51,615 सकल श्रुतक ज्ञान के अक्षर है। इकट्ठी का प्रमाण कितना है? हाँ, ये लास्ट में जो 15 लिखा है ना उसके बदले 16 कहेंगे तो इकट्ठी का प्रमाण होगा। इकट्ठी नाम क्यों पड़ा मालूम है? अठारह से शुरू हुई ना संख्या, 1844 जो हमने अभी पढ़ा, तो ये 18 उसको इकट्ठी कहते, इक और अठ, इक अठ, तो इकट्ठी आगे इज इक्वल टू जो कुछ है आदि, तो पहले दो अक्षर लेकर फिर आके पूरी संख्या को इकट्ठी कह दिया। कहाँ भी है, पंचे कछक एक कय दुपंचन वसुन्न सत्ततीय सत्त सुन्न दुचौक सत्त छचदुचदु अठे कसुदवन्ना। ये उल्टी गति होती है अंकों की, अंका नाम वामतो गति कहते हैं, अंकों की उल्टी गति होती है। उल्टी यानी कैसे, अक्षर हम लेफ्ट से राइट को पढ़ते हैं और अंकों को पढ़ना है तो पहले एकम दशम शतम ऐसे पढ़ते हैं। अब कहते हैं 42, तो पहले किसका नाम लिया, दो का नाम लिया, फिर चार का नाम, 84, 84 में पहले चार का फिर 80 का है ना, तो इस तरह से अंक उल्टे पढ़े जाते हैं। तो यहां भी देखा पंचे का छक्के एक कया, पांच से शुरू किया था उन्होंने, क्योंकि पांच तो आखिर में आता है और लास्ट में अठ एक का सुदवन्ना, आठ और फिर एक, श्रुतके वर्ण ने अक्षर बताए। हम पढ़ेंगे नीचे अर्थ, 5 1 6 1 2 बार 5 9 0 7 3 7 शून्य, दो बार चार, ये सात और शून्य के बीच में कॉमा चाहिए, नहीं तो सात शून्य हो जाएगी। दो बार चार, सात छ, चार चार, आठ और एक, इन अंकों को वाम क्रम से रखने पर, अर्थात अभी हमने जो पढ़ा ना, एक आठ चार चार छ सात, इतने तो कोड़ा कोड़ी हुए, चार चार शून्य, सात तीन सात शून्य, फिर इतने तो कोड़ी रह गए, और फिर वो पचासी पंचानवे लाख इक्यावन हजार छः सौ पंद्रह, इतने सकल शुतक ज्ञान के अक्षर है। अब विशेषार्थ, अ ई उरु लू ए ऐ ओ औ और औ, ए ए ओ और औ, हाँ, ये नौ स्वर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के भेद से सत्ताईस प्रकार के होते हैं। क्या कहते हैं, इसी में अ को आ करेंगे तो दीर्घ हो जाएगा, और उसमें और एक आ मिलाएंगे तो वो प्लुत हो जाएगा। वैसे ई ह्रस्व ई कहलाती है, हम तो दो ही यूज करते हैं ना, ई और ई, तो उसमें और ई करो तो वो प्लुत हो जाएंगे। हर एक में से उ, उ और उ, तो हर एक में ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ऐसे तीन तीन हो जाते हैं इन स्वरों में। तो ये नौ त्रिक सत्ताईस ये हो जाएगा। फिर क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये मालूम है कचट तपय के नहीं मालूम, स्कूल में पहली क्लास में सीखे थे ना, क ख ग घ, उसके बाद किसका नंबर आएगा मालूम नहीं, अरे यही तो अभी तो पढ़ा ना, क फिर च वर्ग, क वर्ग का अर्थ है क ख ग घ म, क ख ग घ, वो ग्रुप है ना, ये किस बेसिस पर उसको इकट्ठा किया, हाँ बोलो देवेंद्र भाई, क ख ग घ का किस बेसिस पर इकट्ठा किया, मेमोरी थोड़ा ही होता है, च छ ज झ य उच्चार करके देखो तो ख्याल में आएगा, क ख ग घ ये सब गले में इसमें से निकलते हैं, कंठ में से, च छ ज झ जीभ कहाँ टकराती है, हाँ 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 हाँ, कर्क दांत पर नहीं टकराती, हाँ ऊपर, हाँ तालवा के ऊपर, हाँ क च, उसके बाद किसका नंबर है, क च ट त प य, इसी क्रम से आएंगे, क फिर च, क च ट, ट ठ ड ढ ण, ये ऊपर ही सब जीभ अटती है ना, क च ट त, फिर त, त थ द ध न, ये दांत के ऊपर की जॉ पर आती है, प फ ब, ये ओष्ठ से ही बोले जाते हैं, प फ ब भ म, फिर ये जो है ना, य र ल व श श स ह, ये आठ, इस प्रकार कुल मिलकर तैतीस व्यंजन होते हैं, इनको व्यंजन कहते हैं। तथा अम, अह, क और प, ये चार योगवाह होते हैं, ये साइन के लिए वो क और प लिखा। इस प्रकार 27 स्वर, 33 व्यंजन और चार योगवाह सब मिलकर 64 अक्षर होते हैं। इनके एक संयोगी अर्थात प्रत्येक, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी आदि 64 संयोगी अक्षरों का प्रमाण लाने पर कुल द्रव्य श्रुति के अक्षरों का प्रमाण पूर्व में कही गई 20 संख्या प्रमाण होता है, जो इकट्ठी की संख्या हमने देखी थी उसमें से एक कम किया था। इन संयोगी भंगों की संख्या के उत्पन्न करने का नियम इस प्रकार है, ये विशेषार्थ में बताए उन्होंने सब, 64 से लेकर एक एक प्रतिलोम क्रम से, प्रतिलोम यानी उल्टा क्रम, भाज्य राशि स्थापित करो, भाज्यानी जिसको भाग देते हैं उसको भाज्य राशि कहते हैं। उसके नीचे एक से लेकर 64 तक अनुलोम क्रम से भागहार राशि स्थापित करो। देखो नीचे जरा उन्होंने दिखाई है, मैं अभी पार्टी पर ही लिखने वाली थी मगर यहाँ छापा है नीचे, दो चार लाइन जो नीचे लिखा है ना, 64, 63, 62, 61 ऐसे एक तक, ये तो ऊपर स्थापित करना अंश में, और नीचे भागहार में क्या लिखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 64 तक। यहाँ भाज्य को अंश और भागहार को हार कहते हैं, जिसको हम छेद भी कहते हैं। अनंतर जितने संयोगी भंग निकालने हो वहां तक के अंशों को परस्पर गुणा करके और हारों को परस्पर गुणा करके लब्ध करो बराबर, लब्ध अंशों के प्रमाण में लब्ध हारों के प्रमाण का भाग देने पर उतने संयोगी भंग आ जाते हैं। अब ये इसको हम 64 को भूलेंगे, हम 5 तक देखते हैं, 5, 4, 3, 2, 1 उसके नीचे लिखना 1, 2, 3, 4 और 5। 5 संयोगी भंग कितने हो गए हैं, पांचों का एक कॉम्बिनेशन एक ही हो सकता है, उसमें 2, 4, 5 अलग अलग कॉम्बिनेशंस नहीं हो सकते, बराबर है ना। यही बात यहाँ बताना चाहते हैं, क्या कहते हैं, और एक एक सिंगल को रखेंगे तो कितने होंगे भंग, 5 हो जाएगी, बराबर है ना। अब क्या कहते हैं देखो, फिर ये तीसरी लाइन पढ़ती, जितने संयोगी भंग निकालने हो वहां तक के अंशों को परस्पर गुणा करके और हारों को परस्पर गुणा करके लब्ध अंशों के प्रमाण में लब्ध हारों के प्रमाण का भाग देने पर, अभी हमें 4 संयोगी भंग निकालने हैं, 4-4 का संयोग करना है, तो उसमें क्या करना, 5 और 4 को गुणा करना और 1 और 2 से गुणा करके भाग देना, इस तरह उसमें ले लेना है, 10 हो जाएंगे। अभी 2 संयोगी निकालने हैं तो वहां तक के, इस यहां तक के गुणा करना पड़ेगा, पांच हो जाएंगे, 2 संयोगी भंग 5 हो जाएंगे। हम हमेशा 3 निकालते हैं ना, ABC वाली, वो आपको आसान होगा, पहले 3, 2 और 1 लिखना, फिर 1, 2 और 3 लिखना, सिंगल ABC लिखते तो 3 होते हैं, 3 भंग हो जाते हैं, और फिर 2-2 संयोगी लेते हैं तो 3 भंग हो जाते हैं, 2-2 संयोगी का, 3 संयोगी का 1 भंग हो जाता है, क्योंकि ये सब निकल जाते हैं ना उसमें, 3 तक अगर ले लेते हैं तो। देखो अभी हम क्या कहते हैं, यहाँ फिर देखते हैं, नहीं समझा, अच्छा ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर मैं समझाऊंगी दोबारा। अच्छा यथा के आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये इनका नहीं हुआ है, हमारा बहुत बार हुआ है। एक संयोगी भंग निकालने पर 64 अंश में एक हार का भाग देने पर, अभी जो नीचे संख्या लिखी हमने 5 से शुरू की थी, यहाँ 64 से शुरू की है, 64 / 1 ये बात है ना, वहां पर 64 एक संयोगी भंग आ जाते हैं, ये 64 बराबर करो, चो के ऊपर वहां रफर आया है। द्विसंयोगी भंग निकालने पर, अभी यहाँ देखो ज्यादा आपको तक इन्हें समझ में आएंगे, 64 गुना 63 करना, जैसे हमने वहाँ 5x4 किया था हाँ, और 1x2 से भाग दिया था। यहाँ 64x63 4032 आते हैं, उसमें 1x2 2 हो जाते हैं, उसका भाग देने पर 2016 द्विसंयोगी भंग आ जाते हैं। दो दो संयोगी को भंग करेंगे तो कितने आएंगे, तो इतने आएंगे हाँ। इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए। अब ये जो हमने देखे थे 3 संयोगी भंग कितने हो गए अभी बोलो, 5x4 64 की बात हमने, ये 5 से 1 तक की बात की थी। 5x4x3 / 1x2 / 3, 3 को 3 गए 2×2 = 4, 10 हो जाएंगे। ख्याल में आई बात हाँ। ऊपर ऊपर के गुणा, नीचे नीचे के गुणा, और फिर लास्ट में वही गुणाकार भागाकार कर देना हाँ। इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए। यथा ये अभी हमने पहले ही देखा था, पूर्व में जो 20 अंक प्रमाण कुल अक्षर कहे आए हैं, उन्हें एक साथ लाने का नियम यह है कि 1111 इस प्रकार 64 संख्या का विरलन करके, विरलन करना यानी उसको बिखेर देना, एक एक में अलग अलग स्थाप देना। जैसे 4 संख्या है तो हम 4 बार एक एक लिखेंगे तो 4 संख्या हो जाएगी, उसको कहते विरलन करना। और विरलित राशि के प्रत्येक एक पर देय रूप से 2 इस संख्या को देकर, जो उसके ऊपर लिखेंगे हम उसको देय राशि कहते हैं। तो 64 बार 2-2 लिखा, सॉरी 1-1 लिखा, और हर एक 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 के ऊपर हमने 2-2 लिखा। अपनी भाषा में 64 बार 2-2 लिखे और उनको परस्पर गुणा करना है। जो राशि उत्पन्न हो उसमें से एक कम कर देने पर, हमने ये 3 राशियों पर घटित किया था, 2×2×2 8 होते हैं, उसमें से एक कम करेंगे तो 7 होते हैं। तो कोई भी 3 बातें हो तो उसमें तो सप्तभंगी ही निकलेगी, उससे ज़्यादा भंग या कम भंग नहीं होंगे। जो हम सप्तभंगी कहते हैं तो उसमें कौन से 3 बातें हैं कि जिन पर सप्तभंगी बताई जाती है हाँ देवेंद्र भाई हाँ, अस्ति नास्ति हाँ, अवक्तव्य को लेना, अस्ति नास्ति तो कॉम्बिनेशन हुआ, अस्ति नास्ति और अवक्तव्य, इन तीनों के जो कोई कॉम्बिनेशन हो गए, हर एक को अलग अलग रखो, तीनों को एक बार एक साथ रखो और 2-2 को रखो, ऐसे 7 भंग हो गए। ऐसे यहाँ पर समझना, वहाँ तो 3 में घटित किया, यहाँ तो 64 है, तो 64 को एक एक बार रखो, फिर 2-2 का कॉम्बिनेशन, फिर 3-3 का कॉम्बिनेशन, 4-4 का कॉम्बिनेशन, आखिर में 64 का मिलकर एक कॉम्बिनेशन। तो ये कैसे निकालना, तो 64 बार 2 लिखकर आपस में गुणा करो, उसमें से एक माइनस करो, तो 64 बार 2 का गुणाकार होता है इकट्ठी प्रमाण, उसमें से एक कम करेंगे तो ये लास्ट में जो 15 या लिखा ना, देखो 1844-6744-07-37-09-55-16-16, ये तो इकट्ठी का प्रमाण हुआ। इसमें से एक अंक कम करने पर समस्त द्रव्य श्रुत के अक्षर होते, ये टोटल अक्षरों की संख्या है, और 1634 करोड़ हमने देखी तो वो पदों की संख्या थी, पदों में अक्षरों की संख्या। वो हमने पहले भी हाँ, अभी उसकी बात नहीं आई। तो ये एक 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 64 बार, और उसके ऊपर वो 2-2 लिखा था, ये बहुत नीचे ऊपर लिखा है ना, हमें ऐसा लगता है नई लाइन है, वो विरलन है। नीचे जो एक एक लिखा है उसको कहेंगे विरलन, ऊपर जो 2×2×2 उसको कहेंगे देय राशि, देय। अब श्रुत ज्ञान के पदों की संख्या कहते हैं वह इस प्रकार है, प्रमाण पद, अर्थ पद और मध्यम पद। इस प्रकार पद 3 प्रकार के हैं, उस दिन हमने याद किया था, इस सब की बात हुई थी यहाँ पर। उनमें से जो 8 अक्षरों से बनता है वह प्रमाण पद कहा जाता है, यानी उसका प्रमाण निश्चित है, आठ आठ अक्षरों का एक एक पद, ये प्रमाण निश्चित होगा। जैसे धम्मो मंगल मुकट्ठ, एक घ हुआ है ध करना, ये नीचे दिया है दशवैकालिक में से कुछ लिखा है, फुटनोट में तीसरा नंबर पर, धम्मो मंगलम उक्किट्ठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमंसन्ति जस्स धम्मे सयामनो। ये कोई भी रत्नगण शावकाचार है या समय सार है, उसकी जो हम पढ़ते हैं संस्कृत के श्लोक, रत्नगण शावकाचार याद है पहला श्लोक क्या है? हाँ, वो दूसरी लाइन है, नमः श्री वर्धमानाय, आगे निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, आठ आठ का है ना। हाँ, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे, आठ 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 आठ, ये होता है प्रमाण पद। ऐसे चार प्रमाण पदों का एक ग्रंथ अर्थात श्लोक होता है। इस प्रमाण पद के द्वारा 14 अंग बाह्य रूप सामायिक आदि प्रकीर्णकों के अध्यायों के पदों की संख्या और श्लोकों की संख्या कही जाती है। हाँ, ये जो अंग बाह्य जो है उसकी संख्या तो इसके आधार से कहेंगे, विशेषार्थ। व्याकरण के नियमानुसार सुबंत और तिंगत पद कहे जाते हैं, तिगंत, हाँ सुबंत और तिगंत। प्रकृत में इनकी विवक्षा नहीं है। यहाँ पद के जो तीन भेद कहे हैं, उनमें से प्रमाण पद और मध्यम पद अक्षरों की गणना की मुख्यता से कहे, अक्षरों की गिनती से उन पदों की बात कहते हैं, और अर्थपोध अर्थबोध की मुख्यता से कहा गया है। अर्थपद में ऐसे कोई निश्चित नहीं कि इतने ही संख्या में अक्षर उसमें होने चाहिए। मध्यम पद से द्वादशांग रूप द्रव्य शुद्ध के अक्षरों की गणना की जाती है, और प्रमाण पद से द्वादशांग के सिवाय द्रव्य शुद्ध के अक्षरों की गणना की जाती है। ये ज्यादा क्लैरिटी दी है इसमें। अंग बाह्य जो है ना 14 प्रकीर्णक, उसमें ये प्रमाण पद है, और जो द्वादशांग है 12 अंगों की जो गणना की हो तो ये मध्यम पद के द्वारा की जाती है। अनुष्टुप श्लोक, इसको अनुष्टुप कहते हैं, ये आठ आठ अक्षरों वाला जो है 32 अक्षरों का होता है और उसमें चार पद माने गए हैं। इस नियम के अनुसार आठ अक्षरों का एक प्रमाण पद समझना चाहिए। शिखरणी आदि छंदों में 32 से अधिक अक्षर भी पाए जाते हैं तो भी प्रमाण पद की अपेक्षा गणना करते समय वहां भी एक पद में आठ अक्षर लिए जाएंगे, यानी भले वो शिखरिणी हो शार्दुल विक्रीड़ित हो कोई भी हो, वो गणना की मुख्यता से वहाँ कितने पदों का ये ग्रंथ है ऐसा जब कहेंगे तो वहाँ उसकी मुख्यता है। आठ आठ अक्षरों का एक प्रमाण पद कहेंगे, ऐसे कितने पदों से वो शास्त्र बना है उसकी बात करेंगे। अनुष्टुप जो है ना, अनुष्टुप यानी जहाँ जहाँ अभी हमने जो वो अनुष्टुप वाले है, ये छंद अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार गद्य ग्रंथों में भी प्रत्येक पद का प्रमाण आठ अक्षर ही लिया जाता है। ये बात यहाँ ज्यादा क्लैरिटी ने बता दिया, तो ये पूछेंगे कितने पद प्रमाण है तो आठ आठ अक्षरों का एक प्रमाण, तो गद्य ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितने पद है या कितने श्लोक है ऐसा भी कहेंगे, आठ चौक 32 का एक श्लोक कहेंगे, इतने अक्षरों का एक श्लोक और इतने श्लोकों से ये ग्रंथ बना, ऐसा भी कहेंगे। यहाँ एक पद में सुबंत या तिहंत कई पद आ जाए या एक भी पद न आवे तो भी इससे आठ अक्षरों के क्रम से पद की गणना करने में कोई अंतर नहीं पड़ता, भले आठ अक्षरों में एक पूरा शब्द बने या नहीं बने, वहां अक्षर गिनने हैं बस। मध्यम पद के अक्षर आगे बतलाए हैं, वहां भी यह क्रम समझना चाहिए, पर अर्थबोध की मुख्यता से लिया जाता है, उसमें अक्षरों की गणना की मुख्यता नहीं है। जितने अक्षरों से अर्थ का बोध होता है उतने अक्षरों के समुदाय को अर्थपद कहते हैं। जैसे प्रमाण परिगृहितार्थ एक देशे वस्तु अध्यवसायो नयः, क्या कहते हैं, प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक देश में वस्तु का अध्यवसाय करना, वस्तु को रखना, वस्तु को उस रूप जानना, ये नए हैं। ये नए की परिभाषा बताई उन्होंने यहाँ पर इत्यादि। अर्थात प्रमाण के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ के एक देश में वस्तु के निश्चय करने को नए कहते हैं। ये वाक्य हुआ ना पूरा एक। ये ऊपर कहाँ है, प्रमाण परिगृहितार्थ। अच्छा, इस वाक्य से नए रूप अर्थ का बोध होता है, नए किसे कहना, इसका बोध होता है, तो ये पूरा ही अर्थपद कहलाएंगे। इसलिए यह एक अर्थपद है, कहा भी है। पदमत्थ सणिमेणम पदमिह अथरह्यमलपम तम्हायरियाणम अथालावो पदम कुणई। श्रुतक ज्ञान में पद अर्थ का आधार है, किंतु जो पद अर्थरहित होता है वह अनभिलाप्य अर्थात उसका उच्चारण करना व्यर्थ है। इसलिए आचार्यों का अर्थालाप पद को करता है, अर्थात आचार्य विवक्षित अर्थ का कथन करने के लिए जितने शब्द उच्चारण करते हैं उनके समूह का नाम अर्थपद है। वाक्य है कोई भी, हाँ, अकेला शब्द नहीं लेना। अर्थपद किसको कहना, तो जिसमें से कुछ अर्थ ग्रहण हो। हाँ, शब्दों के समूह को अर्थपद कहा। और ऊपर हमने अक्षरों के विशिष्ट प्रमाण में अक्षरों की ग्रुप को, समूह को, भले उसमें से अर्थ निकले या नहीं निकले, उसको आठ आठ को हमने एक एक पद कह दिया था प्रमाण पद में। और मध्यम पद में ये जो अभी बताएंगे संख्या, जो हम पहले भी संख्या जान चुके हैं, यहाँ लिखते देखो, 1634 करोड़ 83 लाख 7888 7888 अक्षरों का एक मध्य पद होता है, कहा भी है। मध्यम पद कहा था अभी तक, तो म डालना, मध्यम पद होता है। यहाँ आगे गाथा ऊपर लिखी, देखो, 1634 कोडियोत्य असीदिलक्षं च सत्तसहस्रष्टसदम् अठासीदीय पदवन्ना। पद में वर्णों का समूह कितना है उसको बताया। मध्यम पद में 1634 करोड़ 83 लाख 7888 अक्षर होते हैं। इस मध्यम पद के द्वारा पूर्व और अंगों के पदों की संख्या का प्ररूपण किया जाता है, यानी पूर्व में कितने पद है, अंगों में कितने पद है, उसकी बात बताई जाती है। 38 नंबर, तिविहं पदं तु भणिदं अर्थ पद प्रमाण मध्यम पदं ति मध्यम पदेन भणिदा उवंगाणं पद विभागा। अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यम पद, इस प्रकार पद तीन प्रकार का कहा गया है। उनमें से मध्यम पद के द्वारा पूर्व और अंगों के पदों के विभाग का कथन किया गया है। मध्यम पद के अक्षरों के द्वारा श्रुत ज्ञान के संपूर्ण संयोगी अक्षरों के अपरिवर्तित अर्थात भाजित करने पर सकल श्रुत ज्ञान के 112 करोड़ 83 लाख 58,000 5 पद होते हैं। ये सकल श्रुत ज्ञान के यानी कितने, 81 माइनस 1, इसको पदों के अक्षरों की संख्या 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 इससे भाग देना, 81 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये 1634 आदि, तो कितनी संख्या आएगी, 112 करोड़ 83 लाख 58,000 और 5 इतने पद हो गए और बाकी उर्वरित संख्या हो जाएगी, उसमें से एक पूरा पद नहीं होता है तो अपूर्णांक हो जाएगा ना, तो उतने अक्षरों में से फिर अंग बाह्य श्रुति की रचना होती है। सकल ऊपर पढ़ेंगे पहले, 58,000 दोन्य 56 मित्त कोड़ियो 33,000 पद संख्या 5 सुदणाने, पंच के संच पंच ऊपर संच दिखता है, पंच करो उसको, देखो सकल श्रुत ज्ञान में पदों की संख्या 56 के दुगुने अर्थात 112 करोड़ ऊपर है ना, 58,000 दोन्य, ये क्या लिखा 58,000 दोन्य, 56 मित्त कोड़ियो, हाँ 56 गुणे ले दोन, 112 करोड़ 83 नीचे कहाँ गया, सकल शुद्ध ज्ञान में पदों की संख्या 56 के दुगुने अर्थात 112 करोड़ 83 लाख 58,000 और 5 पद प्रमाण है। बारह अंगों में निबद्ध अक्षरों से अतिरिक्त, यानी इतने सारे 12 अंगों में हो गए, उसके अतिरिक्त अक्षरों का प्रमाण 8,01,08,175। इतना है। अनंतर इन अक्षरों को 32 अक्षरों से भाजित करने पर, 32 से क्यों भाग देना, हाँ एक श्लोक हो जाएगा, समझ में ना श्लोक, क्योंकि 8-8 का एक एक पद हुआ, ऐसे 4 पदों का एक श्लोक भाजित करने पर 14 प्रकीर्णकों का और उनके श्लोकों का प्रमाण 25,03,380 होता है, और एक श्लोक के प्रमाण के आधे में से एक अक्षर कम कर देने पर जितना शेष रहे उतना होता है। गिनती में 14 अंग बायो में ये 25,03,380 पूर्ण श्लोक और 15/32 15/32 खंड श्लोक समझना चाहिए। हाँ पुनरुक्त कहीं लिखा ही नहीं उन्होंने, बिल ऐसे सीधे ही अक्षर लिए उन्होंने, हमने तो अपुनरुक्त अक्षरों की पहले बात की थी ना, अपुनरुक्त ही इतने 81 माइनस 1 हो गए, पुनरुक्त करेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। एक्चुअली गिनती करते हुए उन्होंने इतने लिए। हाँ आप क्या कहती है, अंग बायों के टोटल अक्षर, हाँ उसको 32 से भाग देंगे तो कितने श्लोक हो जाएंगे, 25,00,000 होगा, 3,380। अब एक एक अंग में कितने पद है उसकी बात करेंगे। अंग में टोटल मध्यम पदों से अंग की रचना है और श्लोकों से या प्रमाण पदों से अंग बाह्य की रचना है। आचारांग में 18,000 पद है, सूत्रकृतांग में 36,000 पद है, स्थानांग में 42,000 पद है, समवायांग में 1,64,000 पद है, व्याख्या प्रज्ञप्ति में 2,28,000 पद है, नाथ धर्मकथा में 5,56,000 पद है, उपासकाध्ययन अंग में 11,70,000 पद है, अंतकृत दशांग में 23,28,000 पद है, अनुत्तरोपपादिक दशांग में 92,44,000 पद है, प्रश्न व्याकरण अंग में 93,16,000 पद है, विपाक सूत्रांग में 1,84,00,000 पद है। इन 11 ही अंगों के पदों के समुदाय का प्रमाण 4,15,02,000 होता है। ये 11 को मिलकर भी दृष्टिवाद सबसे बड़ा है ना, हाँ 108,00,00,000 कुछ हो जाएगी उसके। दृष्टिवाद अंग में 108,68,56,005 पद है। समय थोड़ा है, हाँ इस दृष्टिवाद अंग के अभी इसमें हमने 5 भेद देखे थे, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका, ये 5 अर्थाधिकार है, अलग अलग उसके अधिकार है। उनमें से परिकर्म में 1,81,05,000 पद है। इस परिकर्म में चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति, ये 5 अर्थाधिकार है। उनमें से चंद्र प्रज्ञप्ति में 36,05,000 पद है, सूर्य प्रज्ञप्ति में 5,03,000 पद है, जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति में 3,25,000 पद है, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में 52,36,000 पद है और व्याख्या प्रज्ञप्ति में 84,36,000 पद है। यहीं रुकते हैं अभी हम, ये संख्या ज्यादा हो जाएगी ना। 1 ज्ञान मार्गण में यही तो है सारा, शुद्ध ज्ञान के विधि, ये समय ज्ञान चंद्रिका में ये बात आई है, यही बात। पर वहां ये अपुनरुक्त अक्षरों की बात नहीं उठाई, जो कि अपुनरुक्त लिखे है तो ही इतने अक्षर हो गए, पुनरुक्त होने पर ज्यादा हो जाएंगे। चलो, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होड़ो। रेना बेन,